ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, ये जहन की आवाज है। काउंटडाउन नहीं है ये कोई, हारमोनियम की कीज की तरह कुछ गाने काले सफेद से मेरे अंदर बैठ गए हैं। यूं लगता है कि सांसों की आवाजाही पर ये तरंगित हो उठते हैं। कभी काली पट्टी दब जाती है, कभी सफेद। इन गानों को याद करना नहीं पड़ता, बस उन पट्टियों को छेड़ना भर पड़ता है। गुलजार साहब सच ही कहते हैं, मैं चुप कराता हूँ हर शब उमड़ती बारिश को, मगर ये रोज गई बात छेड़ देती है। बारिश की दो दिनों से लगातार चलती ये टप टप मुझे एक बहुत पुराने और दुर्लभ तराने को सुनने के लिए प्रेरित कर रही है, जिसे एक शहद भरी दक्ष आवाज ने गाया है, जो इस उत्कृष्ट रचना को निभा सकने में पूरी तरह से समर्थ थी। फिल्म फरियाद 1964 के इस गाने के बोल लिखे हैं केदारनाथ शर्मा ने, जिन्हें केदार शर्मा के नाम से जाना जाता था, और धुन बनाई है स्नेहल भटकर ने और गाया है सदा सुरीली सुमन कल्याणपुर ने। ये गाना जेब रहमान और केदार शर्मा के पुत्र अशोक शर्मा पर फिल्माया गया है। केदार शर्मा के ही अनुयायी स्नेहल भटकर का सुरीला संगीत और मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, मुबारक बेगम और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गजों के गाए बेहतरीन गानों के बावजूद फिल्म नहीं चली, लेकिन मीठी आवाज की धनी सुमन कल्याणपुर के गाए सबसे अच्छे गानों में से एक ये अनोखा गीत मेरे अंदर हमेशा एक तार छेड़ देता है और मैं उनकी आवाज की मधुरता में भीग जाती हूँ। सुमन कल्याणपुर, जिनका वास्तविक नाम सुमन हेमा डे है, का जन्म ढाका बांग्लादेश में एक मंगलौरी परिवार में हुआ था, जो इनकी 6 बरस की उम्र होते होते बॉम्बे आ गया। यहीं उनकी संगीत की शिक्षा शुरू हुई। वो अक्सर पारिवारिक या स्कूल के कार्यक्रमों में नूरजहां के गाए गानों की नकल किया करती थी। ऐसे ही किसी आयोजन पर प्रभात फिल्म्स कंपनी के संगीतकार और ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत केशवराव भोले, जिन्हें आधुनिक मराठी संगीत का अगुआ समझा जाता था, ने उन्हें गाते सुना। उनकी वजह से ही 1952 में आकाशवाणी पर पहली बार सार्वजनिक रूप से गाने का मौका मिला और इस परफॉर्मेंस की वजह से ही 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी से में पार्श्व गायन की शुरुआत हुई। स्कूल स्टाफ और बच्चों द्वारा प्रायोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रोता के तौर पर मौजूद मशहूर गायक तलत महमूद और मोहम्मद शफी मात्र 17 वर्ष की कम उम्र सुमन के बेहतरीन गायन से अत्यधिक प्रभावित हुए। तलत साहब ने मोहम्मद शफी को उनकी फिल्मों में सुमन को गाने का मौका दिए जाने के लिए आग्रह किया और साथ ही साथ उनके लिए रिकॉर्डिंग कंपनी HMV से भी सिफारिश कर दी, जहाँ वो अपनी गजलें रिकॉर्ड करवाते थे। नौशाद के सहायक रह चुके शफी साहब खुद उनकी गायकी से इतने प्रभावित हुए कि वही मौके पर ही अपनी अगली फिल्म मंगू में गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेश कर दिया। इस तरह से सुमन ने पहला पार्श्व गीत फिल्म मंगू के लिए एक लोरी, कोई पुकारे धीरे से तुझे, रिकॉर्ड करवाया। इस फिल्म के नायक निर्माता शेख मुख्तार शुक्राची चांदनी से के गानों से पहले से ही प्रभावित रहे थे। उन्होंने सुमन कल्याणपुर को फिल्म में 3 गाने गाने को दिए। हालांकि दुर्भाग्य से किसी कारणवश इस फिल्म के संगीतकार मोहम्मद शफी को हटना पड़ा और उनकी जगह ओपी नैयर फिल्म के संगीतकार हो गए, जिन्होंने सुमन कल्याणपुर की सिर्फ 1 लोरी को ही फिल्म में रखा। ये और बात है कि बदले में उनसे फिल्म आर पार के गाने का एक भाग और कोरस गवाया। मोहम्मद रफी और गीता दत्त के साथ सुमन ने भी इस गाने का एक स्टैंजा गाया, मोहब्बत कर लो जी भर लो अजी किसने रोका है। इस तरह से ये गाना युगल गीत नहीं बल्कि त्रयी गीत या ट्राइड है, जिसमें सुमन ने दूसरा स्टैंजा गाया है और दूसरे स्टैंजा से आगे कोरस गीता दत्त और सुमन कल्याणपुर ने मिलकर गाया है। आर पार 1954 में रिलीज हुई। संभवतः इसके संगीत की सफलता ही वो कारण रहा होगा कि फिल्म मंगू, जो इसके 6-8 महीने बाद रिलीज होनी थी, उसमें मोहम्मद शफी की जगह ओपी नैयर को संगीतकार बनाया गया। इसलिए आरपार का गाना मोहब्बत कर लो जी भर लो अजी किसने रोका है सुमन कल्याणपुर का पहला रिलीज गाना बना। एक रोचक बात और, फिल्म आरपार के रिकॉर्ड पर सुमन कल्याणपुर का नाम नहीं आया। बताते हैं कि उनके माता पिता ने ओपी नैयर से नाम ना देने के लिए निवेदन किया, संभवतः इसलिए क्योंकि उस वक्त तक सुमन स्कूल जाने वाली छात्रा थी। तो इस तरह से फिल्म मंगू के गाने को ही सुमन कल्याणपुर के पहले रिकॉर्डेड एकल गीत का श्रेय जाता है। जिन्हें ये जानने में दिलचस्पी है कि ओपी नैयर के संगीत के साथ लता मंगेशकर की आवाज किस तरह से लगती, क्योंकि दोनों ने अपने पूरे करियर में एक भी गाना साथ नहीं बनाया है, तो इस आरपार के गाने में सुमन कल्याणपुर की आवाज को सुने, हूबहू लता की आवाज। अगर आवाजों का प्रतिबिंब बनता हो तो ऐसा ही होता होगा। मजे की बात यह है कि सुमन कल्याणपुर ने भी इस गाने के अतिरिक्त कोई और गाना ओपी नैयर के साथ रिकॉर्ड नहीं किया। सुमन ने अमूमन शास्त्रीय संगीत वाले गाने नहीं गाए। अपवाद के तौर पर अब्दुल रहमान खान के कहने पर HMV के लिए 2 ठुमरियां जरूर गाईं। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शास्त्रीय संगीत पर आधारित मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया इनका फिल्म सांझ और सवेरा का वो गाना याद कीजिए जिसमें महमूद और शोभा खोटे कॉमिक सिचुएशन में है, अजह हूँ ना आए बाल माँ सावन बीता जाए। ये कहीं से भी क्लासिकल गानों से कमतर नहीं है। इसी तरीके से शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म रेशम की डोरी 1974 में उनके गाए रक्षाबंधन के गाने को कौन भूल सकता है। इसे सुनकर मेरी आंखें हमेशा ही नम हो जाती हैं, क्योंकि इसकी मिठास में बचपन के अल्हड़ दिन और भाई की याद एक साथ आ जाती है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दुतार से संसार बांधा है। और इस अमर गाने को कौन भूल सकता है, मेरे महबूब न जा आज की रात न जा, होने वाली है सहर थोड़ी देर और ठहर। नौशेर इंजीनियर के निर्देशन में बनी फिल्म नूर महल 1965 के लिए गीतकार सबा अफगानी और संगीतकार जानी बाबू कव्वाल एक रहस्यमयी रोमांचक गाना बनाना चाहते थे, और देखिए वो वाकई सफल रहे। इस गाने में मुख्य भूमिकाओं में जगदीप और चित्रा हैं। इसकी अच्छी लिखाई, अच्छी धुन और उतना ही अच्छा गायन की वजह से एक बहुत कम पहचान की अभिनेत्री पर फिल्माए जाने के बाद भी ये गाना अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। ये गाना सही मायनों में गाने में उस प्रभाव का ध्वजवाहक है जिसे सुमन इफेक्ट कह सकते हैं, और वस्तुतः यही वो गाना है जिसने मंगेशकर बहनों के प्रभुत्व के बावजूद सुमन कल्याणपुर को स्थापित किया। यही वो गाना है जो आज भी मंगेशकर बहनों की गायकी के बरक्स सुमन कल्याणपुर की गायकी के महत्व को रेखांकित करता है। सुमन युगल गीतों के लिए ज्यादा पहचानी गईं, विशेष तौर पर रफी के साथ गाए डुएट्स के लिए, जिनमें से कुछ तो अत्यधिक लोकप्रिय हुए।
नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे।
अंताक्षरी में बहुधा गाए जाने वाले फिल्म जब जब फूल खिले के इस गाने का संगीत कल्याण जी आनंद जी के द्वारा बनाया गया है, और ये गाना शशि कपूर और नंदा पर फिल्माया गया है। युगल गीतों की सफलता का राज गाने वालों की आवाजों के बीच संतुलन, आपसी समन्वय और कैसे वो एक दूसरे के पूरक बनते हैं, इन बातों पर निर्भर कर जाता है। सुमन कल्याणपुर अपने साथी गायक की आवाज के साथ न केवल बढ़िया तालमेल बिठाती हैं, बल्कि हर गाने में कुछ अलहदा सुंदर और चिरस्थायी प्रभाव जोड़ देती हैं।
पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर।
रफी के साथ गाया ये गाना फिल्म शगुन 1964 का है, जिसका संगीत खयाम ने दिया था। राग पहाड़ी पर आधारित इस गाने का फिल्मांकन कमलजीत और वहीदा रहमान के ऊपर सुरम्य पहाड़ी स्थल नैनीताल में हुआ है। नैनीताल की खूबसूरत वादियों से इश्क सा करता हुआ ये गाना मुझे नॉस्टैल्जिया से भर देता है, क्योंकि नैनीताल मेरा घर है। 60 के दशक में जब किन्हीं कारणों से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साथ नहीं गा रहे थे, उस दौरान सुमन कल्याणपुर ने रफी के साथ बहुत से शानदार गाने गाए, लेकिन उन्हें सुनकर कोई बावला ही कहेगा कि दोनों की जुगलबंदी के लिए संगीतकारों के सामने सिर्फ यही एक कारण रहा होगा। जहां उनके रफी के साथ गाए ज्यादातर गाने लक्ष्मी प्यारे या शंकर जयकिशन अंदाज के चुलबुली रंगत के हैं, वहीं बहुत से गाने मधुर और भावपूर्ण भी हैं। सुचित्रा सेन और धर्मेंद्र द्वारा अभिनीत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बंगाली फिल्म उत्तर फागुनी 1963 के हिंदी रीमेक ममता 1966 के गाने रहे न रहे हम के दो वर्जन हैं, एक लता मंगेशकर का अकेला गाया हुआ और दूसरा रफी और सुमन कल्याणपुर की जुगलबंदी। लता के गाने के बाद जब ये समझा जाता हो कि इससे बेहतर तो दूर आस पास भी किसी का पहुंचना संभव नहीं, ऐसे में इस डुएट में सुमन कल्याणपुर न केवल इस गाने को अपना बना लेती हैं, बल्कि अपनी अलहदा छाप भी छोड़ देती हैं। मजरू के लिखे रूहानी बोल और रोशन के संगीत से रोशन इस गाने के दोनों ही वर्जन आज भी बन के सबा महक रहे हैं।
है खूबसूरत ये नजारे ये बहारे हमारे दम कदम से,
जिंदा हुई है फिर जहां में आज इश्को वफा की रस्म हमसे,
यूं ही इस चमन यूं ही इस चमन की जीनत रहेंगे मन के कली मन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम।
मुकेश के साथ उनके युगल गीत बहुत मीठे कानों में शहद घोलते हुए से हैं।
चुरा ले न तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना, लुभाता है मुझको ये मौसम सुहाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे नाना।
बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि तीसरी कसम फिल्म का गाना दरअसल एक डुएट सॉन्ग के रूप में रिकॉर्ड किया गया था।
दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
और फिल्म में मुकेश के गाए तीन अंतरे के बाद आखिरी एक अंतरा सुमन कल्याणपुर ने गाया है। जाने क्यों इसे रिकॉर्ड में रिलीज नहीं किया गया। जो लोग इस स्टैंजा के बारे में याद करते हैं उनमें से बहुत संभव है कि लोग इसे लता का गाया समझें, क्योंकि फिल्म में लता और आशा के बहुत अच्छे एकल गीत हैं। 60 के दशक में सुमन कल्याणपुर और शंकर जयकिशन जोड़ी ने साथ साथ बहुत से हिट गाने हमें दिए। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सांझ और सवेरा के गाने चंद कमल मेरे चंद कमल से सुमन हमें बांध ही लेती हैं। शानदार ऑर्केस्ट्रा से सजे इस गाने से एक संगीतकार के रूप में इस जोड़ी के बारे में तो पता चलता ही है, ये गाना एक गायिका के रूप में सुमन कल्याणपुर के बारे में भी बहुत कुछ कहता है, क्योंकि बहुत ऊंचे ऑक्टेव का होने की वजह से इसे निभाना बहुत मुश्किल है। मोहम्मद रफी या महेंद्र कपूर जैसे गायकों तक के लिए इस गाने की स्केल ऊंची ही प्रतीत होती है, लेकिन सुमन कल्याणपुर जिस सहजता से इसे गा ले जाती हैं, उससे उनकी रेंज और काबिलियत का मुजाहिरा होता है। ये अत्यंत दुखद भी है कि इतनी अकूत प्रतिभा से भरी इस गायिका को उसका उचित देय नहीं मिल सका। लता की आवाज के साथ उनकी आवाज की समानता ही एक तरह से उनका अभिशाप भी बन गई। हालांकि स्वयं सुमन कल्याणपुर इससे बेफिक्र रहीं और संगीत की दुनिया में अपने बनाए स्थान में खुश रहीं। ताजगी उनकी आवाज की मूलभूत विशेषता है। मीठी ताजी हवा की तरह उनकी आवाज कानों की प्यास बुझाती भी है, पढ़ाती भी है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने गानों को बहुत सुंदर अदायगी के चटक रंगों से पेंट कर देती हैं और जिसके ऊपर आंतरिक भावनाओं का चमकीला लेप सा लगा होता है। उनकी अदायगी ही है कि फिल्म भीगी रात 1965 का ये ड्यूएट रिलीज होते ही हरसू चर्चा का विषय बन गया।
ऐसे तो न देखो के बहक जाए कहीं हम, आखिर कोई किंसान है फरिश्ता तो नहीं हम, हाय सीना कहो बात के मर जाए कहीं हम, आखिर कोई किंसान है फरिश्ता तो नहीं हम।
जिस अदा से सुमन इस गाने में हाय कहती हैं, कौन संगीत प्रेमी होगा जो मर न मिटे। कहना गलत नहीं है कि गायकी में सुमन और लता दोनों को ही ईश्वरीय वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन शोहरत और सम्मान लता जी को ज्यादा मिला। उनके बहुत से गाने लता की स्टाइल में हैं और काबिलियत में अगर उन्हें श्रेष्ठ नहीं तो लता से कमतर भी किसी हालत में नहीं कहा जा सकता। उनकी गायकी के अंदाज को लता के अंदाज से अलगाना दो कारणों से मुश्किल हो जाता है। पहला, शायद वो स्वयं अवचेतन में अनायास ही लता की नकल किया करती थी, और दूसरा ये कि संगीतकार भी उन्हें लता के विकल्प के रूप में देखा करते थे। हालांकि लता की आवाज के साथ साम्य के बारे में बात करते हुए वो खुद बहुत असहज होती हैं। एक इंटरव्यू में इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने बताया, मैं उनसे बहुत प्रभावित थी, अपने कॉलेज के दिनों में उनके ही गाने गाया करती थी, मेरी आवाज पतली और नाजुक थी, मैं क्या करती। हालांकि जानकारों का मानना है कि अत्यधिक साम्यता के बावजूद सुमन कल्याणपुर के अंदर संगीत की निर्दोष अनुभूति, गहरी समझ और सुरों का बारीक ज्ञान उनके वैशिष्ट के प्रतीक चिन्ह या हॉलमार्क है। उनमें से एक गाना जिसने सुमन को लता की छाया से बाहर आकर म्यूजिक इंडस्ट्री में स्थान पक्का करने की सहूलियत दी वो है भप्पी सोनी द्वारा निर्देशित फिल्म ब्रह्मचारी 1968 का ये गाना, जिसे लिखा हर्षद जयपुरी ने है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। शम्मी कपूर और मुमताज की जोशीली जोड़ी, उनके शानदार डांस स्टेप, मुमताज की आइकॉनिक नारंगी साड़ी ब्लाउज जिसे भानु अथैया ने डिजाइन किया था, और बातचीत के खिलंदर अंदाज की गायकी के लिए जाना जाता है। सुमन की कोई भी कहानी इस गाने के बिना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि गाना बनाने और फिल्माने के लगभग सभी पहलुओं पर ये पार्टी सॉन्ग या डांस नंबर खरा उतरता है। अपनी अलहदा मिठास और मधुर आवाज जो हमेशा हमारे अंदर गूंजती रहेगी की वजह से सुमन हमारी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो चुकी हैं। उनके लिए हमारे दिल हमेशा अप्रैल फूल 1964 का ये गाना गुनगुनाते रहेंगे।
तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे।
हमारा आज का गाना सुमन कल्याणपुर की अद्भुत गायकी तो दिखाता ही है, उन्हें अपनी समकालीन गायिकाओं के समक्ष स्थापित भी करता है। मुझे लिरिक्स के साथ इस गाने की धुन का कंट्रास्ट खींचता है। कोई एक चीज थी जिसका इजहार होना था, प्रेमी को बताया जाना था, एक तरह से पहली बार ये बात उनके सामने खुलनी थी कि प्रेमिका उनसे कितना प्यार करती है। हाले दिल उनको सुनाना था और ये हो ना सका, उन्हें जताया ना जा सका, बताया ना जा सका। इस बताए ना जाने को किस तरह से सुमन कल्याणपुर बुलंद आवाज में ऐलान सा करती हुई कहती हैं,
सुनाया ना गया, सुनाया ना गया।
ऐसा ही कंट्रास्ट इस गाने के फिल्मांकन में भी दिखता है, अंधेरे और उजाले का कंट्रास्ट। ये कंट्रास्ट उसी तरीके का है जिससे प्रेम करने से आप रह ना पाए, उसी से कहने से रह जाएं। ये वही कंट्रास्ट है जो अहमद नदीम कासमी के इस शेर से उभर आता है, किस तरह मैं इजहारे तमन्ना करता, लफ्ज सूझा तो मानी ने बगावत कर दी। एक और अनोखी बात इस गाने के साथ है, गाने का म्यूजिक मिसरे को बीच से तोड़ता है। एक ही लाइन में जो जुबां पे मुझे लाना था दो बार कहने के बाद अचानक ठक करके इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते हैं और सुर ऊंचा हो जाता है।
वो लाया ना गया, वो लाया ना गया।
ऐसा लगता है अचानक गाना बदल गया हो, लेकिन सौंदर्य इसी बात में है कि दूसरे मिसरे के पहले ताल पर लय जब लौटती है तो वापस उसी धज में होती है। मुझे लगता है इस गाने को अगर आम गानों की तरह एक ही सिलसिले में गाया गया होता तो वो बात ना होती जो अब है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों के स्वर्ण काल की कोई आवाज आपके कहे अनकहे प्रेम की आवाज बने, तो सुमन कल्याणपुर की मीठी आवाज में ना सुनाकर भी हाले दिल उनको सुनाने की अदा देखिए। जो बात जुबां पर लानी थी उसे ना लाकर भी लाना देखिए, और देखिए कि कैसे बहुत बचाने के बाद भी प्यार में दिल को बचाना मुश्किल हो जाता है।